โอมสัมปิอาจารย์ติ๊กลาเซ่ปีสโนร์สุดआबू प्रदर्शनी का किताब बनाया था क्योंकि आबू का तीर्थ है सारी दुनिया में मुख्य क्यों क्या कारण है
वहां पर परमपिता परमात्मा अवतरण करके ज्ञान करते
तीर्थ कहा जाता है तीर्थ तीर्थ तीर अर्थात किनारा अर्थ माने स्थान अर्थात बुद्धियों को एक किनारे एक ठिकाने लगाने वाला स्थान जब सारी सृष्टि का विनाश होगा उससे पहले हर मनुष्य मात्र को परमात्मा बाप की पहचान हो जाएगी और उस सुप्रीम बाप का काम कहां से चल रहा है कहां से वो शक्ति आ रही है कहां से वो ज्ञान की किरणें आ रही हैं वो सारे मनुष्य मात्र को पता चलेगा ऐसा ठिकाना माउंट आबू ही होगा जैन तीर्थों में इसका जिक्र है वैताड्य पर्वत अष्टापद पर्वत आठ पद जहां से डिक्लेयर होते हैं आठ फरिश्ते जहां से प्रत्यक्ष होते हैं जो फरिश्ता सुदेवता बनते हैं ऊंचे से ऊंचे जो सारी सृष्टि के पूर्वज हैं दुनिया की हर प्रकार की जनरेशन के पूर्व में जन्म लेने वाले वो पूर्वज सभी को मान्यता प्राप्त है जिनके द्वारा समूची सृष्टि का कल्याण होता है कराने वाला है बाप तो सारी दुनिया का बुद्धि योग उस बाप के ठिकाने पर पहुंचता है जहां से साकार शक्ति में साकार बाप निराकारी तेज वाला सारी दुनिया की मनुष्य मात्र की बुद्धि में बैठ जाता है अर्थात सारी दुनिया के मनुष्य मात्र एकाग्र चित्त हो जाते हैं, सबकी बुद्धि को ठिकाना मिल जाता है, सब पहचान जाते हैं कि वो सुप्रीम सोल बाप गॉड फादर एक व्यापी है। मात्र एक मनुष्य तन में मुकरर रूप से आता है और उसका एक ही मुकरर स्थान है। साप की मनबुद्धि रूपी आत्मा को ठिकाना उस स्थान पर मिल जाता है। तो जैसे इस साकार सृष्टि पर वो माउंट आबू तीर्थ स्थान परमधाम बन जाता है, क्योंकि मनबुद्धि रूपी आत्मा साप की एक ठिकाने लग जाती है। ऐसे तो दुनिया में मनुष्यों की अलग अलग जनरेशन है जो अलग अलग स्थान पर अपना स्थान मानते हैं, जिसे तीर्थ कहते हैं। मुसलमान लोग मक्का को मानते हैं, हिंदू लोग चार चार तीर्थों को मुख्य मानते हैं, कोई यरूशलम को मानते हैं, बुद्ध को फॉलो करने वाले बुद्ध की महाप्रयाण स्थली को मानते हैं, परंतु सच्चा ठिकाना तो सबका एक है ना। और एक ही सत्य है, कहते भी हैं गॉड इज वन, अनेक तो सच्चे नहीं हो सकते। तो एक जो सत्य है वो सृष्टि के अंतकाल में सारी दुनिया के बीच प्रत्यक्ष हो जाता है। तो सभी धर्मों का तीर्थ आबू समझा गए। ये बात एडवर्टाइज करें तो आबू वाले बहुत खुश होंगे, हिंदर वाला मंदिर जैन धर्म वालों ने बनाया है, परंतु वो समझते नहीं हैं। कि जैन धर्म इंद्रियों को जीतने वाले जिनकी यादगार उसके फॉलोअर्स का नाम जैन है, जिन अर्थात जीता इंद्रजीत कहा जाता है, इंद्रियों को जीता इंद्रिय जीते जगत जीत कहा जाता है। षष्ठी रूपी वृक्ष में वो इंद्रियों को जीत दिलाने वाला धर्म अव्वल नंबर में है। आदि है जिसे आदि सनातन धर्म कहा जाता है, परंतु जैनी लोग जानते नहीं हैं। जैसे हिंदुओं में 24 अवतार माने जाते हैं, उन्होंने भी 24 तीर्थंकर भगवान मान लिए। भीलवाड़ा मंदिर जैन धर्म वालों ने बनाया है, वो भी आदिदेव को मानते हैं, आदिनाथ कहते हैं। जैसे हिंदुओं में आदिदेव शंकर को कहा जाता है, शंकर की मूर्ति भी नग्न बनाते हैं और तीर्थंकर को भी नग्न दिखाते हैं। अर्थात निराकारी स्टेज वाला, जैसे कि हाथ पांव नाक आंख कान है ही नहीं, देह की श्रुति से परे, ये इंद्रियों को जीतने का काम महान वीरता का काम है। इसलिए आदिदेव का ही अंतिम नाम महावीर पड़ा है। तुम बच्चे भी माया पर जीत पाने वाले महावीर बनते हो। बाकी तो दुनिया में कोई में ज्ञान है नहीं कि महान वीरता क्या होती है। वो सारी दुनिया को हिंसा पर विजय पाना चाहते हैं, हिंसा के आधार पर सारी दुनिया में विजय पाना, इसको महान वीरता समझते हैं। परंतु हिंसा के आधार पर हिस्ट्री में कोई ने भी विजय नहीं पाई, सारे विश्व के ऊपर। अर्थात उसे महावीरता नहीं कहेंगे, हिंसा करना ये कोई वीरों का काम नहीं है। वीरों का काम है कमजोर की रक्षा करना। वास्तव में तो ये हिंसा और अहिंसा का ज्ञान दुनिया में कोई को नहीं था। लक्ष्मी नारायण को भी हिंसा और अहिंसा का ज्ञान नहीं था। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि आदिदेव का काला पत्थर निकला। अब वास्तव में काला तो कलयुग में बनते हैं, का तो अभी हैं। इसलिए नारायण को भी काला दिखाई दिया है, जगन्नाथ को भी काला दिखाते हैं, श्रीनाथ को भी काला दिखाते हैं, राम को भी, कृष्ण को भी काला दिखाते हैं। सब कलयुग के अंत में आकर के काले बन जाते हैं, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। ऐसे पत्थर बुद्धि में फिर बाप की प्रवेशता होती है। जैसे कि निचात काला पत्थर बन जाते हैं, ये सभी बातें भक्त लोग नहीं जानते हैं। तो आबू की एडवर्टाइज तुम बच्चे अच्छी रीति कर सकते हो, और आबू की महिमा तो निकलनी ही है, आज नहीं तो कल सारी दुनिया में महिमा व्याप्त हो जाएगी। तो आबू दर्शन वाला किताब भी कोई को दे सकते हो, किताबें इकट्ठी करके रखे रहते हैं, इससे तो बांट देना चाहिए। आबू में एक है दिल वाला मंदिर आदिदेव का, और भक्ति मार्ग में ही बनाया है। मंदिर तो सब यादगार है, भक्ति मार्ग में यादगार बनाई हुई है। असली तो बनते हैं ज्ञान मार्ग में, और नकली बनते हैं भक्ति मार्ग में। असली बनाने वाला बाप है, और नकली बनाने वाला रावण है। रावण से भक्ति मार्ग आता है, राम बाप से ज्ञान मार्ग आता है। तो अभी तुम बच्चे जान गए हो, ये है तुम्हारा चैतन्य दिल वाला मंदिर। जहां तुम बैठ तपस्या करते हो, तो उन्होंने उसी स्थान पर यादगार बनाया हुआ है। आदिदेव का मंदिर भी है, और गुरु शिखर भी है। वो आदिदेव है, अर्थात आदिदेवता है। उससे आदि में कोई देवता होता नहीं, और उसको देवता बनाने वाला गुरु चोटी पर बैठा हुआ दिखाया गया। यादगार बनाई है गुरु शिखर, वो बहुत ऊंचे रहते हैं ना, देवताएं तो इसी सृष्टि पर रहते हैं। देवताओं को देवता बनाने वाला सदगुरु तो बहुत ऊंची स्टेज में रहते हैं, ऊंचते ऊंच भगवान गाया हुआ है, ऊंचते ऊंच और नीचते नीच, ये महिमा कहाँ की जाती है? साकार सृष्टि पर की जाती है या परमधाम में की जाती है? साकार सृष्टि पर ऊंचते ऊंच भी है और नीचते नीच भी है, परंतु वो बाप नीची सृष्टि पर आता है, नीचते नीच पाटधारी में आता है, बड़े से बड़े कांटे में आता है, पत्थर बुद्धि में आता है, तो भी ऊंचते ऊंचे सदैव पाट बजाने वाला है, कभी नीची स्टेज में नहीं आता। इसलिए ऊंचते ऊंचे भगवान गाया जाता है। भगवान बाप कहो, गॉड फादर कहो, बाप एक ही है। वो कभी भी नीचा पार्ट नहीं बजाता। देवताएं ऊंचे बनते हैं तो नीच भी बनते हैं, लेकिन मनुष्य को देवता बनाने वाला वो सद्गुरु सदैव ही ऊंचा है गाया जाता है। जब वो ऊंच बनाता है तो जरूर कहेंगे कि भगवान के बच्चे आत्माएं भी साथ रहेंगे। आत्म के स्टेज जो धारण करेंगे वो जरूर ऊंची स्टेज में रहेंगे। हम सभी ब्राह्मण हैं, तो जहां बाप रहते हैं हम आत्माएं भी वहां ब्रह्म तत्व में रहती हैं। सभी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, तुम जानते हो जो जड़ मंदिर है, जो भक्ति मार्ग में बनाया है, यादगार है। कभी तुम ही चैतन्य में बने थे, बाकी आदि देव नीचे है, गुरु शिखर ऊपर में है। वो सदगुरु भगवान है, उसको देवता नहीं कहेंगे, और तुमको तुम्हारी ऊंची स्टेज में तुमको देवता कहेंगे, भगवान नहीं कह सकते। भक्ति मार्ग में तो कह देते हैं तुम भी भगवान हम भी भगवान, शिवोहम कह देते हैं, ब्रह्मास्मि। अब बाप बताते हैं कि मैं जिस तन में आता हूं टेम्पररी पार्ट बजाऊं या मुकरर रूप से पार्ट बजाऊं तो उस तन का नाम ब्रह्मा रखता हूं, बाकी ऐसे नहीं है कि जो आए सो समझे ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, शिवो हम, मैं शिव हूं, तो कहेंगे ऊपर में है आदिनाथ, नाथ अर्थात नाथने वाला, सबकी नाक में क्या कर देता है, नकेल डाल देता है। हम सब उसकी सजनीय हैं, सजनी की नाक में क्या डाला जाता है, है? नथनिया डाली जाती है। तो तुम सब उस ऊंचते ऊंच बाप की सजनिया हो। तुमको नाथ लेते हैं, कंट्रोल में कर लेते हैं, तो जरूर पूर्णता कुछ ताल्लुक है तुम्हारे साथ। ये पक्का कर लेना चाहिए, गुरु शिखर का भी ताल्लुक है। क्या आदि देव का भी ताल्लुक है और गुरु शिखर का भी ताल्लुक है? तुम्हारा भी मंदिर है और तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, क्योंकि एक जैसा पुरुषार्थ तो करते नहीं है। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे, महावीर तो होते ही, परंतु जैसा अवलंबन निश्चय होना चाहिए, अटूट अटल अडोल निश्चय, ऐसे कोई बिरले ही हैं, नहीं तो बहुतों का निश्चय और संशय चलता ही रहता है। माया संशय में ला देती है, नहीं तो दुनिया वालों का तब बाप में संशय होता है क्या? कोई से पूछो तुम्हारा बाप कौन है तो धड़ाक से कहेंगे हमारा ये बाप है। कभी कोई को संशय नहीं आवेगा। और यहां तो संशय आ जाता है, माया संशय में ला देती, माया तुम्हारी बुद्धि को एक ठिकाने ठहरने नहीं देती है। समझते ही नहीं है कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, नहीं समझते हैं, अर्थात निश्चय नहीं है। अभी अभी निश्चय बुद्धि और फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं, नहीं तो भूलना थोड़े ही चाहिए। परंतु माया ऐसी प्रबल है जो एकदम भुलाई देती है। पत्थर बुद्धि बनाई देती है। बाप कहते हैं कि मैं बिल्कुल ही अंतिम जन्म में प्रवेश करता हूं और साकार जन्म में प्रवेश करता हूं। मैं कोई सूक्ष्म शरीर में नहीं आता हूं, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूं। अगर इस बात पर निश्चय हो तो फिर भूल क्यों जाएं? निश्चय वाले तो चलते फिरते काम करते इस नशे में सदैव हर्षित रहे, परंतु माया भुलाई देती है। एकदम जैसे मुर्दे मिसल बन जाते हैं, जैसे मुर्दे का कोई सोच विचार नहीं चलता, ऐसे मुर्दे बन जाते हैं। कोई मुर्दा बनता है तो घर परिवार वाले सब रोने लगते हैं, मुर्दे कितनी अशांति फैलाते हैं। एक दो को अशांत कर देते हैं। बाप कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल साकार तन में आता हूं, परंतु कोई बिरलाई है तो स्थायी रूप से निश्चय बुद्धि होकर के याद करते हैं। ये आदिदेव है जिसमें बाबा प्रवेश करते हैं। आदिदेव फिर आदिनाथ गाया हुआ है, वो भी कहते हैं मैं स्थाई याद में रहूं तो परमातीत अवस्था हो जावे। ऐसा फील करता हूं क्योंकि हमेशा याद रहे इसके लिए ही पुरुषार्थ करना होता है। बाप भी समझते हैं कि आस्ते आस्ते पिछाड़ी में पक्के निश्चय बुद्धि बन जाएंगे, नहीं तो निश्चय में बार बार संशय आता रहता है। तो आबू का बहुत प्रचार करना चाहिए, ये बड़े से बड़ा तीर्थ है क्या? क्या बड़े से बड़ा तीर्थ है? आबू, जड़ाबू है, चैतन्य आबू भी है, है? आबू का क्या अर्थ है? है आ प्लस बू, जहां दुनिया के सारे बदबूएं आकर के इकट्ठी हो जाएं। बदबूएं कब होती हैं? है जब विचारी बनते हैं तो बदबूएं होती हैं। बाप व्यभिचारी में कोई प्रकार की बदबू नहीं हो सकती। फिर बड़े से बड़ा तीर्थ कौन हुआ चैतन्य में? जो बड़े से बड़ा तीर्थ है वहां सारी दुनिया की बुद्धि लटक जानी चाहिए। अर्थात वो है आदिनाथ, सबकी मन बुद्धि को नाथने वाला। और ये है आदिदेव, कौन? ब्रह्मा और कृष्ण सो सत्यजी नारायण। तो पक्का बुद्धि में बैठ जावे ये आबु तीर्थ तो बड़े से बड़ा तीर्थ है। बाप लिबरेटर गाइड बनकर के यहां आते हैं। यहां आकर के लिबरेशन का काम करते हैं। तुम मंदिर का भी पहचान दे सकते हो। कोई को बता सकते हो कि ब्रह्मा के बच्चे यहां तपस्या कर रहे हैं। ये ब्रह्मा की औलाद की कोठरियां बनी हुई हैं। वो कोठरियां बनाने वाला कौन? जिन कोठरियों में बैठे तपस्या की है वो कोठरियां कौन बनाता है? शिव बाबा बनाते हैं। कोई की बड़ी कोठरी बना देते हैं, कोई की छोटी बनाई देते हैं, कोई के अव्वल नंबर पे बना देते हैं, कोई की लास्ट नंबर पे बना देते हैं। सब कुछ बाबा ही कर देते हैं, तो खुद करते हैं ना। बाप तो कहते हैं तपस्या की तो बात ही छोड़ो, तुम सारी राजधानी अपने लिए स्थापन करते हो अपनी ही मेहनत से। क्या माउंट आबू में भक्ति मार्ग में जो बड़े बड़े महलमाणियां अटारियां बनाए हुए हैं वो तो पैसे वालों ने बनाए हैं, लेकिन बाप तो गरीब निवाज है। तुम गरीब बच्चे दिलवाड़ा मंदिर के एरिया में अपनी तपस्या भूमि, अपनी कोठरी, अपनी झोपड़ी अपने आप ही तैयार करते हो। उस झोपड़ी में तुम भी तपस्या करते हो और कौन दिखाए है? और तुम्हारी रचना भी दिखाई हुई है। एक एक कोठड़ी में मात पिता और बच्चे भी दिखाए हुए हैं। तो तुम अपनी तपस्या अपने आप करते हो, अपने आप अपना स्थान तैयार करते हो, राजधानी भी अपने अपने आप बनाते हो, तुम कोई से भीख नहीं मांगते हो, खुद ही सब कुछ अपने आप करते हो। वो तो भक्ति मार्ग में कोठरियां बनाई दी है। अभी तुम बच्चे योग बल से सारा काम कर रहे हो, कोई पूछे ये किसकी औलाद है जो तपस्या में बैठे हैं, किसके डायरेक्शन पर ये काम कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे हैं? अरे किसके बच्चे हैं? प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, बाप के डायरेक्शन पर कार्य कर रहे हैं, ये बच्चे राजयोग सीख रहे हैं। तो प्रैक्टिकल में महसूस होता है कि ऐसे बच्चे हम ही हैं जिनके लिए मुरली में पहले ही इशारा दे दिया है कि दिलवाड़ा मंदिर तुम बच्चों की यादगार है, ये जड़ यादगार है, और अभी देखो तुम चैतन्य में यहां बैठे हो। कहां? किस एरिया में है? दिलवाड़ा मंदिर में। तो चैतन्य में बैठने के लिए घरौंदा भी अपना अपने आप बनाना पड़े या नहीं बनाना पड़े है? बनाना पड़े, अपने लिए भी बनाना पड़े और अपनी जो जनरेशन है उसके लिए भी बनना पड़े। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए इस बात में रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है ना, क्यों रियलाइज होना चाहिए किस बात का है?
राजस्थान वो बना रहे राजधानी।
हाँ, राजधानी तो बाद में बनेगी, पहले तो हम अपनी तपस्या स्थली तैयार करें। ऊंच के ऊंच बाप आकर इन कोठरियों में स्थापना करते हैं, तो तुम बच्चों की कितनी बड़ी भारी कमाई हो जाती है, हैं झोपड़ियां, कोई मैलमाड़ियां अटारियां नहीं है, झोपड़ियों में तुम्हारी कितनी कमाई हो जाती है, भारी कमाई है। कोई तो फिर ऐसे भी है जो कमाई करते करते जाकर गटर में पड़ते हैं, बुद्धि खराब हो जाती है, तपस्या के लिए स्थान भी बनाया फिर बुद्धि खराब हुई, देखा कि चौगुने दस गुने पैसे मिल रहे हैं उस स्थान के, तो क्या करते हैं? बेच देते हैं, जाए गटर में पड़ते हैं, उस पैसे का फिर और क्या करेंगे। की कमाई सारी चट कर देते हैं, कुरुक्षेत्र का समाचार भी बच्चों ने सुना। कहां का समाचार? वो है भक्ति मार्ग का कुरुक्षेत्र, जो यादगार बनाया हुआ है। ये है ज्ञान मार्ग का कुरुक्षेत्र, जिसका गीता में वर्णन है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कुरुक्षेत्रे अर्थात कुरु माने किया हुआ कर्म, और क्षेत्र माने भूमि स्थली, कर्म करने की भूमि। तो दुनिया का ऊंचे से ऊंचा कर्म करने की भूमि कौन सी हुई है? हाँ, वो कुरुक्षेत्र कहाँ हुआ? भारत में तो हुआ, माउंट आबू में हुआ, जहां ऊंचे से ऊंचा कर्म किया, उस क्षेत्र में, उस भूमि में, जिसका गीता में वर्णन है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। वो कुरुक्षेत्र तो भक्ति मार्ग है, ये तो ज्ञान मार्ग का कुरुक्षेत्र है, जहां तुमने तपस्या का कर्म किया है। आदिदेव का मंदिर ऊपर में है, और आदिदेवी का नीचे है। तो तपस्या में अंतर पड़ा है या नहीं पड़ा है? अंतर पड़ा। क्या अंतर पड़ता है? आदिदेव की तपस्या ऊंची स्टेज की है, और आदिदेवी की तपस्या उसके मुकाबले उतनी ऊंची नहीं है। तो आदिदेवी का मंदिर नीचे बना हुआ है, यादगार है। वो भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा करने जाते हैं अमरनाथ की, तो अमरनाथ को ऊपर बनाया हुआ है, और वैष्णो देवी को नीचे बनाया हुआ है। तो दोनों ही पर्वतीय स्थल पर, दोनों की ही कहेंगे ऊंची स्टेज, परंतु फर्क क्या है? हाँ, वो बहुत ऊंची स्टेज है। तो जाने वाले ज्यादातर कहाँ जाते हैं?
नीची स्टेज।
ऊंची स्टेज में ज्यादा लोग जाएंगे या नीची स्टेज में जाएंगे? नीचा पुरुषार्थ करने वालों की संख्या ज्यादा होती है या ऊंचा पुरुषार्थ करने वालों की संख्या ज्यादा होती है? नीचा पुरुषार्थ करने वालों की संख्या जास्ती होती है। इसलिए देवी के भगत बहुत तादाद में वैष्णो देवी में जाते हैं। ऐसे यहां भी देखने में आता है, आदिनाथ मंदिर तक जाने वालों की संख्या कम, और आदिदेवी तक जाने वालों की संख्या ढेर की ढेर हो जाती है। माँ प्यारी होती है ना तो बहुत जाते हैं, बहुत मेला लगता है। तो प्राचीन भारत का राजयोग उसकी यादगार नीचे नहीं है, आज देवी के मंदिर की ओर नहीं है, कहाँ है? ऊपर है। प्राचीन भारत का राजयोग यहां दिलवाड़ा में देख सकते हैं। इस राजयोग से ही पैराडाइज की स्थापना होती है। क्या कहा है? टॉप मेस्ट पुरुषार्थ को जो फॉलो करते हैं वो पैराडाइज स्थापन करते हैं, नीचा लक्ष्य लेते हैं तो पैराडाइज स्थापन नहीं होता है। सर्व का सदगति दाता ऊपर आब में विराजमान होते हैं, क्या कहा? ऊपर विराजमान होते हैं, नीचे नहीं आते हैं क्या? है? नीचे स्टेज में नहीं आते हैं? अरे नीचे पे नीचे पतित दुनिया में नहीं आते हैं क्या? आते तो हैं, नीची दुनिया में ही आते हैं। नीच पे नीच पतित तन में आते हैं, परंतु जिसमें आते हैं उसका पुरुषार्थ दिन ब दिन ऊंची स्टेज को जाता है या नीचे जाता है? जब आखिरी ऊंची स्टेज होती है तब सारी दुनिया की सदगति करते हैं, बाकी नहीं कहेंगे कि आज में सारी दुनिया की सदगति हुई या मध्य में सारी दुनिया की सदगति हुई। कब होती है? जिस नीचते नीचे तन नीचते नीचे दुनिया में आते हैं, नीचते नीचे गांव में आते हैं, गंदे से गंदे गांव में आते हैं, जब आते हैं तो सदगति नहीं होती। जब आप समान बनाते हैं तब सारी दुनिया की सदगति होती है। तो देखो ऐसा यादगार मंदिर और कहां भी नहीं है। जहां परमपिता परमात्मा राजयोग सिखाया हो, आप में प्राचीन योग सिखलाते हैं। ये बातें तुम अखबार में भी डाल सकते हो कि बाप ने पैराडाइज कैसे बनाया, उसका मंदिर आबू में है, जो बड़े बड़े महारथी हैं, बड़े बड़े महारथी कहे जाते हैं लेकिन मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। उनको अपना ही अहंकार रहता है, समझते हैं कि मुरली में पॉइंट तो वो ही है जो रोज आते रहते हैं, ऐसे नहीं समझते कि जो पुराने पुराने मुरली के पॉइंट है, बाप सुप्रीम टीचर बन करके उन पुराने पॉइंट्स को ही नया बनाकर पेश कर देते हैं तो नई नई बातें निकल पड़ती हैं। इसलिए कहते हैं रोज गुहते गुहे राज समझाता हूं। गीता में भी गायन है, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुहते गुह्य राज समझाता हूं। ऐसे नहीं कि पुरानी पुरानी बातें ही सुनाता रहता हूं, वो तो भक्ति मार्ग में होता है क्या, कि जो शास्त्र हैं वो ही पुराने शास्त्रों का ज्ञान भक्ति मार्ग में सुनाते रहते हैं, कोई नई बातें तो बताते नहीं। और यहां तो बाप नित नए 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 पॉइंट सुनाते हैं, तो महारथी भी कायदे मुजब अर्थ सहित गहराई में जाकर के मुरली नहीं पढ़ते हैं। ये भी लिखना है कि जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं वो ही इन बातों को समझा सकती हैं, अगर नहीं समझाते हैं या नहीं समझा सकते हैं तो
ना समझ,
तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं है, अर्थात ब्रह्मा के मुख से पैदाइश उनकी नहीं हुई है, मुखवंशावली नहीं है, क्या है, कुख वंशावली है, ब्रह्मा की कोख अर्थात गोद से प्यार लिया है, गोद से प्यार किया है, गोद को याद करते हैं, ब्रह्मा की देह को याद करते हैं, लेकिन उनके वसंस को याद नहीं करते, वसंस की गहराई को नहीं समझते हैं, तो फिर समझाए भी नहीं सकते। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी असली हैं वही इन बातों को समझा सकते हैं और कोई भी नहीं, तुम्हारी बुद्धि में तो बैठा है। तो म्यूजियम आज में भी ये पॉइंट अच्छी रीत उठानी है, कौन से पॉइंट, आज की मुरली में कौन से पॉइंट की बात बताई, माउंट आबू की बात बताई, आबू वाला किताब सभी को देते रहो, अभी बहुत काम रहा हुआ है। अच्छा बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते।